वेदान में के बर्धमान महान जिन विचरे हमारे तत्नुसार गाथा 36 पर कि तो तत्व प्रदीप का टीका आचार्य अमृतचंद्र द्वारा लिखी हुई टीका का नाम क्या है? तत्व प्रदीप का समय सार की टीका का नाम है आत्मख्याति, प्रवचन सार की टीका का नाम है तत्व प्रदीप का, और पंचाशी काय की टीका का नाम है समय व्याख्या अमृतचंद्र की। तो जैसे नाचारी तो सबका एक ही नाम रखते हैं तात्पर्य वृत्ति, उन्हें तात्पर्य वृत्ति मन वे तात्पर्य बताते हैं बस, वृत्ति माने टीका, जगह जगह उसका तात्पर्य निकाल निकाल करके बताते हैं, एक एक गाथा का तात्पर्य, पूरे शास्त्र का तात्पर्य है ना, और सबकी समझ में आए तो उसका न्याय और व्याकरण नए वगैरह भी स्पष्ट करते चलते हैं। अब एक टीका की अपन ने चार लाइनें पढ़ ली थी, फिर भी मैं चौथी लाइन से शुरू कर रहा हूं, अब से ये समय सार आपने उसमें भी होगी इसमें भी होगा है ना। जो द्रव्य बरत चुकी बरत रही और भविष्य में बरतने वाली विचित्र माने विभिन्न प्रकार की पर्यायों की परंपरा के प्रकार से त्रिविधि काल कोटि को स्पर्श करते होने से अनादि अनंत हैं। कल इसका अर्थ बताया था विचित्र का, कि विचित्र का क्या अर्थ होता है, पर मेरे ख्याल से यहीं के बाद अपन आगे कुछ नहीं कर पाए थे। ये आत्मा अनादि अनंत है तो किस अपेक्षा है? अनादि अनंत हम बार बार कहते हैं, त्रिकाली ध्रुव अनादि अनंत, ये शब्द जो हम बोलते हैं वो सब पर्याय की तरफ से है, और द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बात करें तो काल की तरफ से है। काल माने पर्याय होता है, कहीं नहीं ना, काल लब्धि माने पर्याय की लब्धि। जो तीसरा जो उपादान है ना तत्समय की योग्यता, असली काल लब्धि तो वो है, उस पर्याय की उपलब्धि हो जाए तो काल लब्धि है। अभी यहां ये कह रहे हैं कि तीन प्रकार के काल को, तीन प्रकार का काल माने भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल, काल कोटि को स्पर्श करता है, प्रत्येक द्रव्य तीन काल कोटि को स्पर्श करता है, माने अनादि से उसमें पर्याय हो रही हैं और वे पर्याय अनंत काल तक होंगी। कल कहा था काल द्रव्य के जितना समय हैं उतनी प्रत्येक द्रव्य की, प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक गुण की उतनी उतनी पर्याय हैं। इतनी बढ़िया व्यवस्था है, काल के एक समय जो समय है ना उसमें एक पर्याय खचित है प्रत्येक गुण की। आपने ये पढ़ा है, ये गाथा पढ़ी होगी द्रव्य संग्रह की, कि एक एक काल द्रव्य लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर बिल्कुल खचित है, और जैसे उन प्रदेशों को यहां वहां नहीं किया जा सकता वैसे ही उस काल द्रव्य को भी वहां से हटा के दूसरी जगह नहीं किया जा सकता है, क्योंकि क्षेत्र से क्षेत्रांतर क्रिया इन चार द्रव्यों में नहीं होती है, इसलिए उनको निष्क्रियाणी कहते हैं। निष्क्रियाणी जैसे सूत्र कौन, काल द्रव्य आकाश द्रव्य धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, वहां खटित हैं बस। अब जीव और पुद्गल दो द्रव्य रह गए, अपन जीव हैं तो अपन को जीव से प्रयोजन है, और ये पुद्गल का अपने साथ संपर्क है कर्म के रूप में भी और नो कर्म के रूप में भी। शरीर मुख्य रूप से नो कर्म है और ज्ञानावरण आदि ये कर्म है, और आत्मा में विकारी भाव होते हैं, तो ये हमारा संपर्क है। अब ये कहते हैं कि जैसे क्षेत्र में कोई बदला बदली की वो नहीं है ना, लेकिन आज तक किसी को विकल्प आया कि जो आगरा में कालद्रव्य है उस कालद्रव्य को हम जयपुर ले जाए, और जयपुर में जो कालद्रव्य है उसे आगरा ले जाएंगे, दिल्ली ले जाए, ये किसी को विकल्प भी नहीं आया और संभव भी नहीं है। ऐसा तो हम कर सकते हैं कि आगरा का नाम जयपुर रख दें और जयपुर का नाम आगरा रख दें, बदल दे दें। मद्रास का नाम हम चेन्नई रख सकते हैं, बम्बई का नाम हम मुंबई रख सकते हैं, क्यों है? भेसा का नाम हम विदिशा रख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये तो बदला बदली तो हम कर सकते हैं ना, ये तो हमारे हाथ में है। इस जयपुर को हम देश की राजधानी बनाएं और इसका नाम दिल्ली रख दें, क्या? और बदले में दिल्ली का नाम जयपुर रख दें। लेकिन ये जयपुर के जो ये प्रदेश हैं आकाशद्रव्य के और जो कालद्रव्य यहां स्थित हैं, इनको वहां ले जा सकते हैं नहीं ले जा सकते, और वहां के यहां नहीं ला सकते हैं, तो हम कर दें माने काय को क्या कल्पना करते हैं? ये ऐसी कल्पना नहीं है कि एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल हमने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, अपनी बहुत समस्याएं हल हो जाएंगी, टोडरमल जी बहुत परेशान होते हैं। टोडरमल जी माने अपना टोडरमल जी नहीं, वो अकबर के टोडरमल जी, उनके वित्त मंत्री थे टोडरमल। क्या है आप क्या किया है कि जो 30 दिन का महीना होता था ना वो अब से 60 दिन का होगा, समझ में आई क्या कह रहे हो? तो आधी आधी आधा खर्चा रह जाएगा, ये तनख्वाहें देनी पड़ती है ना 30 दिन में, अब भी हम 60 दिन में देंगे तो आधा खर्चा रह जाएगा। तो बीरबल ने कहा हुजूर बहुत ही बढ़िया किया आपने, इतना अच्छा काम किया है कि हम इसकी क्या बात बताएं, अब तो 15 दिन की बजाय एक महीना चांदनी रहेगी और एक महीना अंधेरी रात होगी। कहने वो वाक्य से होगी, उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो तो चंद्रमा की चाल पर निर्भर करता है। तो कहा कि महीना कितने दिन का होना ये भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये भी चंद्रमा की चाल पर निर्भर है। यदि किसी के हाथ में होता, सुनना मेरी बात, तो तुम्हें 30 दिन का 60 दिन नहीं करना पड़ता, ये तो तुम्हारे बाप दादा ही कर चुके होते, उन्हें भी तो आर्थिक समस्या रहती होगी। हो सकता तुम्हें तो 300 दिन की बजाय 600 दिन का करना पड़ता। कहने का मतलब यह है कि कुछ वस्तु स्वरूप ऐसा है कि जिसमें किसी भी कीमत पर कहीं से कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उसमें ये भी है कि आकाश का प्रदेश जहां स्थित है वो वहां है, वहीं रहेगा। जो उसमें कालद्रव्य वहां स्थित है वो वहीं रहेगा। अब इनमें तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। अब हमें इस बात में ऑब्जेक्शन है कि जो कालद्रव्य जो पर्याय है ना कालद्रव्य के निमित्त से हर एक द्रव्य में होती है अनादि अनंत, तो वो जिस समय में जो पर्याय होनी है वो भी अनादि काल से और अनंत काल तक नक्की है। अब मोटी मोटी अपन पर्याय से मोक्ष पर्याय, संसार पर्याय, मनुष्य पर्याय, त्रिंज पर्याय, नारकी पर्याय, बुढ़ापा पर्याय, जवानी पर्याय, ये सब मोटी मोटी पर्याय पकड़े कि जिनमें अपन को बदला बदली करने का भाव आता है, क्यों? कोई वैद्य, कोई डॉक्टर, कोई ज्योतिषी अपन से ये कहे कि पंडित जी आप तो 60 वर्ष जैसे लगते हैं, तो कितनी खुशी होती है कि हम 80 वर्ष के हैं और ये 60 वर्ष का कह रहा है, क्यों होती ना? बिल्कुल अपन जानते सफेद झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं, 60 वर्ष 80 के हैं और 80 जैसे ही लगते हैं। और वो कहे नहीं नहीं आप 100 वर्ष जैसे लगते हैं, तो मुफ्त में लेना नहीं देना नहीं, मुफ्त के लड्डुओं में राग देश करते कि नहीं करते? तो अनादि काल से जिस समय जो पर्याय खचित है, इतनी बड़ी व्यवस्था, अब इसमें तुम थोड़ा भी फेरफार चाहते हो जो भी, हम और कुछ नहीं चाहते हैं, तो सम्मा दर्शन जल्दी हो जाए, मोक्ष जल्दी हो जाए, कि नहीं होगा? क्यों क्यों तुम्हें क्या तकलीफ है? अरे हमें तो कोई तकलीफ नहीं है कि वस्तु के स्वरूप में तुम्हारा जो द्रव्य है उसमें मोक्ष नाम की जो पर्याय है, जिस काल में आना है वो अनंत काल पहले से सुरक्षित है। कहने में हम थोड़ी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी कोशिश से तुम निगोद में थे, अभी तुम्हारा काल आ गया मोक्ष में जाने का, तो वहां से निकल के आए हो, क्या कोशिश की थी बोलो? तुमने क्या कोशिश की थी? फलती है किसी की कोशिश? फिर हम तो साधारण आदमी हैं, तो भगवान महावीर ने त्रिशला के पेट में आने के लिए क्या कोशिश की थी? वे तो बहुत शक्तिशाली थे उस वक्त, सोलहवें स्वर्ग में थे, कितने शक्तिशाली हैं, लेकिन उनने क्या किया बोलो? कोई कोशिश मोशिश नहीं चलती है, पर आज तक किसी ने कोई की नहीं है? हम सब भव बदलने के चक्कर में, सब पंडित भी इसी उपदेश में लग रहे। महाराजों की तो मैं कह नहीं सकता हूं कि महाराज को फुर्सत कहां है ये उपदेश देने की, महाराज को तो और बड़े बड़े काम है। कालिया का इंतजाम करना है उन्हें, तो कि कालिया का क्या होगा है? ये लग रहे हैं कि बस बदले जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, ये जल्दी हो जाए, समाधान जल्दी हो जाए। ये प्रार्थना क्यों नहीं करते हो? समय में हो उत्तम चंदी, ये वस्तु स्वरूप के अनुकूल प्रार्थना है ना, मुझे सन्ना दर्शन जल्दी हो जाए, ऐसी भावना भाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए एक दफे ऐसी प्रार्थना करो कि हे भगवान मुझे सम्यक दर्शन स्वसमय में हो, जब उसे होना है तभी हो, मुझे उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। क्यों? वस्तु स्वरूप तो ये है ना, तो वस्तु स्वरूप के अनुकूल प्रार्थना क्या हुई, मांग क्या है? वो होनी चाहिए। ये असंभव मांग करने से क्या फायदा है? अब वो कहते हैं कि इस पर्याय को जो अनादि से अनंत काल तक के लिए नक्की है, और अभी एक वर्तमान पर्याय वर्तमान काल में उसकी है, और बाकी भूतकाल की अनंत पर्याय अभी जो गाथा आने वाली है ये उसकी भूमिका इसमें चल रही है। अभी वर्त चुकी दो गाथाएं अपन पढ़ रहे थे ना, बोलो भाई क्या है दो गाथाएं? असदभूत हो सदभूत हो सब द्रव्य की पर्याय, सब सदज्ञान में वर्तमान बत ही है सदा वर्तमान, सब पर्याय जो अनुत्पन्न है, अनुत्पन्न माने अभी पैदा नहीं हुई हैं, या नष्ट जो हो गई हैं, जो नष्ट हो गई हैं, जो माने कौन? अनादि काल से लेकर अनंत काल तक अभी तक की असदभावी बे सभी पर्याय का असदभाव है, सद्भाव नहीं है अभी वर्तमान में। असदभावी बे सभी पर्याय ज्ञान प्रत्यक्ष हैं, हे भगवान तुम्हारे ज्ञान केवल ज्ञान में बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाई दे रही हैं। आप समझे? देखो जैसे अभी आप लोग मुझे सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हो इसी समय अशोक जी, ऐसे ही कल आप यहां बैठे थे और मैं यहां बैठा था, तो वो कल का भी दृश्य मुझे अभी जैसा आज का दिख रहा है ऐसा दिख सकता है? जितनी स्मृति होगी उतना तो दिख सकता है, याद में आ जाएगा स्मृति में कभी जे यहां बैठे थे, जे वहां बैठे थे, जीते जीते, लेकिन पूरा का पूरा तो नहीं दिख सकता क्योंकि हमारा ज्ञान परोक्ष है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान में माने केवल ज्ञान में आज की जो स्वभाव में दिख रही होगी अभी आनंद तीर्थंकरों को जो मोक्ष में चले गए उनको भी, ऐसी एकदम क्लियर दिख रही होगी ना, ऐसी कल की दिख रही होगी कि थोड़ी फीकी। क्यों? देखो अभी आप पास में बैठे हो जितने लोग, तो अच्छी तरह से है मैं पहचान सकता हूं। फिर जो पीछे बैठे हैं तो मैं दिखते तो हैं, दिखते तो हैं कोई बैठे हैं, लेकिन मैं पहचान नहीं सकता कि कौन है, कौन कौन है। नहीं, ऐसा थोड़ा केवल ज्ञान में भी होता होगा कि पीछे के थोड़े अस्पष्ट दिखते होंगे हैं? और अच्छा उजेला कर दो तो वे भी साफ दिखने लगेंगे। कि ऐसा कोई चक्कर नहीं है, वो ज्ञान प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है माने जिसमें कोई रंजमात पराधीनता नहीं है। पराधीनत्वात् परोक्षम, परोक्ष की व्याख्या है पराधीन, वो तो स्वाधीन ज्ञान है। अब अनादि काल से लेकर अनंत काल तक की अपनी एक एक गुण की, एक एक पर्याय अपनी माने सबकी, वो केवल ज्ञान के ज्ञान में झलक गई। तो वैसी नक्की थी तब झलकी ना। अब कहने नहीं, नहीं भाई अभी अभी है वो झलक गई ना, समझना। अब लेकिन जो कल बदलेगी वो कहता उसने अभी बदली ही नहीं है, तो बा क्या झलकी होगी। अब आज झलकी वो तो बात सच्ची, लेकिन कल बदल जाएगी तो भविष्य का जानना क्या हुआ। तो भविष्य में जो बदलेगी वो उनने अभी जानी होगी कि नहीं जानी होगी। बोलो आपके भगवान का केवल ज्ञान कैसा है? क्या ये केवल ज्ञान का स्वरूप तो एक दफा ख्याल में आ गया? हमारे बड़े बड़े न्यायाचार्य पंडित ये कहने लग गए थे अंत में, के नियमसार में लिखा है पर को तो व्यवहार से जानता है, इसलिए वो पर को जानता ही नहीं है। और अभी भूतकाल को जानता है, वर्तमान को जानता है, लेकिन भविष्य की तो अभी हुई ही नहीं है, तो वो क्या जानेगा? अब होगी तो ही तो जानेंगी। अब ये गाथा उनने नहीं पढ़ी होगी हेमचंद जी, असदभावी वेत सभी। अभी वे पर्याय असदभावी हैं, असदभावी है माने वर्तमान में है नहीं। अब भूतकाल की तो होके मिट गई, तो वे समझ लो कि चित्र जैसी कहीं होंगी अभी, लेकिन जो अभी हुई नहीं है। अब हमारी समझ में तो नहीं है, नहीं आता तो तुम्हारी समझ में सर्वज्ञता नहीं आती, तो तुमने आज तक भगवान की पूजा नहीं की, ये समझ लेना। क्योंकि जिसकी तुम पूजा करो उसकी क्वालिटी ही नहीं जानते, वो क्या चीज है कि तुमने कैसे जानी कि हम नहीं जानते। अरे भाई तुम जानते होते तो तुम्हारी वाणी में, तुम्हारे मन में ऐसा भिखारीपन नहीं होता और उनसे बदला बदली करने की भावना नहीं होती कि उनसे हम ऐसा काम बताएं। ऐसा नहीं है, वे तो करेंगे तो कुछ है ही नहीं। क्यों? मैं आपके घर आऊं रहूं, मैं कहूं मेरे लायक कोई सेवा बताओ, तो आप कहो कि ये जो कब्बसी रखे ना हमारे जूठे, इनको लेके जरा अंदर रखिए आप। क्यों? तो बताओगे कि क्या बात करते हो? अनंत भाई कहेंगे हमारी आपकी दोस्ती होगी, जो चाहिए मान लो, तो एक पान ले आप मान खाने। ये मूर्ख ये यही अरबपति ने तेरे से कहा कि जो चाहिए हो मांग लो, तो ये पान खाने की सूझी, तुझे मांगना भी ढंग से नहीं आता। तू तीन लोग का नाथ, उससे जो तू मांग रहा है इसे मालूम पड़ता कि तू ये जानता नहीं किसके सामने आया है। मेरा सिर दर्द ठीक कर दो, मेरा पेट दर्द ठीक कर दो, मेरी बेटी की शादी करवा दो, मेरी बेटी का रास्ता निपटा दो, मेरा ये करवा दो, ये करो। वो तुम जी किसको कह रहा है, क्या कह रहा है? और सबसे बड़ी बात तो ये है, इतने महान आदमी से ये छोटे छोटे काम बता रहा है। करवट बदलना हो ना बुढ़े को, तो भगवान को याद कर क्या, हे भगवान। तुझे करवट बदलवा दे, क्या करे? तो तू भगवान को नहीं जानता है, वो ये कहते वो सब पर्याय उनके ज्ञान में झलकती हैं और उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा। ये बात आप लोगों को जचती है कि नहीं? ये शास्त्र की है कि मेरी है, बोलो? ये प्रवचन सार में लिखी कि नहीं लिखी? ये समय सार में लिखी कि नहीं लिखी? तत्वार्थ सूत्र में लिखी कि नहीं लिखी? और जो शास्त्र तुम्हें मान्य हो वो लाओ, मैं उसमें निकाल के बताता हूं। उसमें लिखी है ये बात क्या कि भगवान सब कुछ जानते हैं तीन काल की पर्यायों का? ये कहां नहीं है? छोटी छोटी सी पूजन की किताब में लिखी है। अब सभी जानते हैं तो सत्य जानते हैं ना? यदि वो बदल जाने की होती तो बदल जाने की जानते हैं? और बदल भी जाएगी होती तो तेरी इच्छा के अनुसार थोड़ी वो बदला बदली होती। तू तो राग द्वेष का पिंड है, तेरी इच्छा तो राग द्वेष से लिपटी होती है। तो मैं केवली के ज्ञान में झलका वो होगा। क्यों? कि साहब मुझे स्वीकार नहीं है। ये क्यों स्वीकार नहीं है? कि इसमें मेरी इच्छा के अनुसार तो कुछ हो गई नहीं। क्यों? तो क्या करिए चाहिए कि इसमें ऐसी गुंजाइश निकालो कि केवली के ज्ञान के अनुसार भी हो जाए और उसमें मेरी इच्छा के अनुसार भी हो जाए। अब तुम इतनी सी बात कि मैं चाहता हूं कि आज लौकी की सब्जी बने, अब तुम इतनी सी बात मेरी मानने को तैयार नहीं हो? अब तुम्हारे कहते तुमको भगवान ने नहीं देखी, अब भगवान ने भिंडी की देखी कि भगवान ऐसे छोटे छोटे काम में भगवान को नहीं पढ़ना चाहिए तो भगवान तेरी रसोई घुस रहे हैं, लेकिन वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि तेरी रसोई में काय की सब्जी बनेगी, कैसी बनेगी, क्यों, उसमें कितना नमक पड़ेगा, ये उनके ज्ञान में झलकता है। उन्हें कुछ जानना मानना नहीं पड़ता, उसके लिए उन्हें कोई ट्राई नहीं करनी पड़ती है कि ऐसी छोटी छोटी बातें। मैं आपको एक सच बात बताता हूं, मुझे मुझको ही बहुत आश्चर्य हुआ। मैं बहुत दिन पहले कानपुर में परीक्षण में गया था, वो कौन सा मंदिर कहलाता है, कोई गंज है, बहुत बड़ी गंज कहलाती है, वो प्रसिद्ध उसका मंदिर है जैन समाज का। उस मंदिर में गया था और विपिन जी जब पढ़ते थे यहां मेरे पास, विपिन जी माने हमारे जमाई है ना, मैं छोटे चले गए, वो पढ़ते थे तो वे भी मेरे साथ गए थे, कोई ना कोई एक दो लड़के मेरे साथ हर साल जाते थे परिसरण में, तो उस दिन विपिन जी गए थे। तो एक मंदिर में उनका भी प्रवचन वहां चलता था। अब हम तो एक मोक्षु भाई के घर पर ठहरे थे और वो धर्मशाला में ठहरे थे और वहीं एक पंडित हेमचंद जी थे जो अजमेर के, अभी होंगे वे, बहुत बुजुर्ग पंडित थे, माने उस वक्त भी 70-80 वर्ष के थे, अभी होंगे तो 100 वर्ष से कम के नहीं होंगे, मुझे पता नहीं है। उनका नाम था हेमचंद जी, न्याय तीर्थ थे वो उनके पास ठहरे थे। अब मेरे शाम को एक हॉल में केम्बर पर्याय पर व्याख्यान होते थे, तो उस टाइम बचता था तो वो भी आके सुन जाते थे और ये विपिन जी भी आते थे। अब ये साथ साथ ठहरे थे तो विपिन जी से वो पंडित जी बोलते हैं कि डॉक्टर साहब जो ये कहते हैं कि सब केवली के ज्ञान में झलकता, सब जानते हैं। उन्होंने कहा हाँ साहब, सब जानते हैं, तो ये जो महिलाओं के जापे होते हैं ना, ये उनके शब्द हैं कि महिलाओं के जो जापे होते होंगे तो वे भी उन्हें सब दिखते होंगे। देखो कहां दिमाग गया कहां दिमाग गया कि महिलाओं के जापे दिखते होंगे। कहने की भाई जब दिखते हैं तो सभी दिखते हैं, उसमें क्या, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, भगवान ऐसा क्यों करेगी, महिलाओं के जापाओं को क्यों देखेगी, वे तो दीपरागी है अभी क्या बताए। वे न्यायाधीश थे, मेरे से भी 25-30 वर्ष बड़े थे उम्र में, नाम बता रहा हूं मैं, बिपिन जी ने मेरे से आके कहा, फिर ऐसा पूछते हैं। लोगों को यही अटपटा लगता है, इतनी इतनी छोटी छोटी बातें ये नहीं जान सकते, ये नहीं जान सकते। अरे भगवान, अरे सबका मतलब क्या होता है तुम्हारी समझ में ये नहीं आता है कि उन्हें सब जानते हैं। इतना लिखा ना, इतने से समझ में आना चाहिए था, फिर नहीं आया तो उन्होंने लिखा त्रिकाल जानते हैं तो नहीं आया। तो जो द्रव्य की जो गुण हैं, उनकी जो पर्याय हैं, अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक जो जिस समय में जो पर्याय होनी है वो वहां अनादि से ही खचित है, और वो वहां से कोई हिल नहीं सकती दूसरी जगह। क्यों हिले, क्या कारण है बताइए? कि तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी इच्छा अगर बदलते देर नहीं लगती है, क्यों? अभी आज हमने नक्की कर दें कि जो एक सुविधा अपन को मिली है कि अभी कल तक जो आदमी ये बता देगा कि मुझे अगले भव में कहां जाना है, हम उसकी व्यवस्था कर सकते हैं, हमारे पास ऐसा पावर आ गया है। क्यों सूरज जी, तो आप सब लोग लाके बता सकते हो मुझे, रात को सो सकते हो? सबकी रात हराम हो जाएगी, नींद हराम हो जाएगी, फिर छह दफे बदलोगे शाम को 12 बजे तक, फिर लिख के सोओगे और सुबह 5 बजे उठोगे? नहीं, ये नहीं चलेगा। क्या हम तो सबसे बढ़िया मांग लेंगे ना, सबसे बढ़िया। सबसे बढ़िया क्या? कि सर्वार्थ सिद्धि। अब तो ठीक है ना, 33 सागर तक बहुत सुख भोगेंगे। क्या दंडी भाई, ठीक है? देखो एक छोटी सी बात बताता हूं। ये सौधर्मेंद्र है ना, उसकी 2 सागर की आयु होती है, और उसकी जो सची होती है, सती माने इंद्राणी, तो इंद्र के साथ इंद्राणी बनती है ना, लती भाई बनाते हैं पंच कल्याणक में, तो वो एक सौधर्म इंद्र के जीवन में कितनी इंद्राणी हो जाती हैं? कि 40 नील, नील समझे, 1000, 10000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, 40 नील। और एक के 2 एक साथ नहीं होती, एक ही वो जो मर गई तब दूसरी होगी, दूसरी होगी ना। कितना सुखी है सौधर्म इंद्र की, उसकी थोड़ी में मैं आपको पहचान करा रहा हूं। सौधर्म इंद्र जिसके लिए आप करोड़ों लाखों रुपया दे करके बनते हैं, बनना, नहीं तो मुझे जतीश भाई पंच कल्याणक में नहीं बुलाएंगे मुझे। उसकी मैं तुम्हें थोड़ी हालत बता रहा हूं, उसके वो कितना सुख है उसको वो बताता हूं। मैंने अपने एक मित्र से कहा कि तुम्हारी जो पत्नी 40 साल पहले उसका स्वर्गवास हो गया था और दूसरी पत्नी आ गई, कल ही कहा था, और वो भी बहुत अच्छी है, पहली तो बहुत अच्छी थी ही, लेकिन ये अभी कोई उससे कम नहीं है, आपको कोई तकलीफ आपको नहीं पड़ी, फिर भी आप अभी उस पहली पत्नी को याद करते हैं, ये तो अच्छा नहीं। मैंने कहा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, तो डॉक्टर साहब आपको मैं क्या बता, बुक कैसी थी, ऐसे अलग आंख में आंसू आ जाएंगे, याद ही भरी हो कि तुमको बहुत दुख हुआ ना। तो वो सौधर्म इंद्र को जो सची है वो उतनी प्यारी होगी कि नहीं, कि जितनी प्यारी तुम्हें वो पहली पत्नी थी? मैं आपको जानना चाहता हूं, क्यों? सच्ची तो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, एकदम दूसरी महिला ऐसी हो ही नहीं, ऐसी होती है ना, वो उतनी प्यारी होगी कि नहीं? और जितना दुख तुम्हें अपनी पत्नी के वियोग मरने से हुआ है, उतना दुख उसे 40 नील बार हुआ था। बोलो कितना गया? वो मरी तो हुआ होगा कि नहीं, कि दूसरी अच्छी आ गई ना, कि क्या फर्क पड़ता, तुम्हारी भी तो आ गई, तुम क्यों रो रहे? पुत्र दीवा समझ आई कि नहीं आई? अब कितना, अभी मैं ये बात नहीं कहना चाहता, अभी मैं इससे अलग बात कहना चाहता हूं। तो 2 सागर में मान, अब वे जो पत्नियां हैं वे अगले भव में मोक्ष जाने वाली होती हैं सचियां, यानी वो 40 नील वे पत्नियां मोक्ष चली जाएंगी, तब तक ये यही रखड़ते रहेंगे, समझे ना। वो पत्नी मोक्ष चली जाएंगी और 6 महीना और 8 समय में 600 आरजी मोक्ष जाते, तो कितना समय लगेगा बोलो। सारा ठेका उन्हीं को दे दो और हमारे तुम्हारे लिए रास्ता बंद कर दो, ऐसा होता नहीं है। वो करोड़ों में भी एक का नंबर नहीं आता होगा, लेकिन मान लो तो कितना लंबा काम, यानी वो जो 2 सागर हैं वो कितने लंबे हैं उसका अंदाजा आप लगाओ, वो गड्ढे से समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने आपको ये बात बता रहा हूं। वो गड्ढा खोदो और उसमें बाल डालो और एक बाल डालो, 100 साल में निकालो, कौन करेगा, हमारे बस की नहीं है। अब समझ में आया ना। अब ये 2 सागर कितना लंबा काल है, और फिर तुम 33 सागर की मांग कर रहे हैं ना, तो तुम उतने लंबे काल, 33 सागर कितना लंबा होगा, उतने लंबे काल को एक जगह जाके कैद हो जाओगे, तुम्हारे हाथ में मरना तक नहीं है। अभी तुम तो समझते हो कि मनुष्य गति में तो मेरे हाथ में कम से कम जीना नहीं तो मरना तो है ही है, बोलते कि नहीं बोलते, नहीं है, तुम्हारे हाथ में भी नहीं है, उनके हाथ में भी नहीं है, लेकिन यहां कहने को तो है कि आत्महत्या कोई कर सकता है, क्यों, वहां तो वो है ही नहीं। इतने काल तक, अब संयम बहुत बढ़िया चीज है ना, क्यों, कि 4थे गुण स्थान से 5वें गुण स्थान में ज्यादा सुख है क्या कम, ज्यादा है, कितना ज्यादा, 5वें से 6वें में कितना ज्यादा है, 6वें से 7वें में कितना ज्यादा है, तो वो शास्त्र में आता ना असंख्य गुण निर्जरा, मान असंख्यात गुण ही निर्जरा होती है, यानी असंख्यात गुण ही धर्म होता है, माने असंख्यात गुणा सुख होता है, सब उसकी परिणति में प्रति समय असंख्य गुणी ऐसी वृद्धि होती जाती है ना। अब बस वो स्टॉप हो गया उनका, इतने लंबे काल के गुणी हो। अब चाहिए बोलो, सर्वासिद्धि चाहिए, सुरेश जी तुमने पसंद की थी कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, अभी तुम नक्की नहीं कर सकते, तो नक्की नहीं कर सकते तो जो नक्की है उसे मान लो, क्योंकि वो किसी रागी देसी ने नक्की नहीं किया है, अरहंत भगवान ने भी नक्की नहीं किया है, तीर्थंकर भगवान ने भी नक्की नहीं किया है, जब जो वे जान रहे उनने भी नक्की नहीं किया है, सहज भाव से ये वस्तु के स्वरूप की सहज स्वीकृति धर्म है। ये क्यों कुलाचे मारते हो, शांति से सहज ज्ञाता दृष्टा भाव को विकास करो, संभव है दादा। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, आपकी ख्याल में आ गई ना बात, कि कुछ ऐसा हो, क्यों हो जाए, जैसा होना है वैसा ही हो, मैं कहता हूं, हमारी कोई मांग उसमें नहीं होना चाहिए, तब सर्वज्ञ की स्वीकृति होगी, क्योंकि सर्वज्ञ कहते हैं कि कोई बदला बदली नहीं हो सकती है, और तुम्हारा उनके विरुद्ध ये आंदोलन चालू है, तुम्हारी पर्याय में सर्वज्ञ भगवान के विरोध में तुम्हारा आंदोलन चालू है, वे कहते बदला बदली नहीं होगी, और हम कहते हम करके रहेंगे। मरते समय प्रणाम से ढाल लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब कितनी हुई थी, शास्त्र ने ले लिखा, वो तो कौआ को नमो का मन सुनाया था तो वो देव हो गया था, हो गया देव, हो गया तो क्या हो गया था, देव हो गया तो क्या हो गया था, देव जानते कितने हैं, कितने हैं देव, ये बेंतर हैं जो असंख्यात हैं, भवनवासी हैं जो असंख्यात हैं, मनुष्य तो सिर्फ 29 अंक ही प्रमाण है, इनकी संख्या का पता नहीं है आपको कितने हैं। देव हो जाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि स्वर्ग में चला जाएगा, जो स्वर्ग में जितने देव हैं उससे असंख्य गुणे देव उसके जो भवनवासी बंदर ज्योतियों में हैं, क्या हो गया? क्यों वो नवोकार मैंने सुना दिया ना उनने, इसलिए वो कुत्ता देव हो गया। कदाचित नहीं सुना पाते तो वो कुत्ता कहां जाता? फिर बताऊं, तुमने सोचा कभी? क्यों सोचा कभी? ऐसा तो हो सकता था ना, सैकड़ों कुत्ते मरते हैं उनको नवोकार में सुनाने वाला कोई नहीं है। सैकड़ों कुत्ते मरते हैं और उन्हें नवोकार मंत्र सुनाने वाला कोई नहीं है, क्या करो बोलो? उन्हें भी एक आदमी नहीं मिलता तो कहां जाता? अरे तो भी वो वहीं जाने वाला था। कैसा बात कर दो, उसमें बदला बदली नहीं हो सकता? कहां नहीं हो सकता, अरे वो नवोकार मंत्र नहीं सुनाता तो भी कि तुम नमोकार मंत्र की महिमा को पीछे पे क्यों पड़े? नमोकार मंत्र की महिमा है ना, कि क्यों नहीं सुनाता? क्योंकि उसे वहां जाना था और उसे सुनना निमित्त बनना था, तो क्यों नहीं सुनाता? क्यों? कौन बदलता? कैसे? क्यों नहीं बदलता बताइए? क्यों? ये कल्पना, व्यर्थ की कल्पना करके हम झूठी कल्पनाएं कर करके बहुत झूठी बातों को प्रोत्साहित करते हैं। देखो मैं आपसे कहता हूं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये पांच पाप है ना, ये हर दृष्टि से पाप है ना, कि किसी अपेक्षा से अच्छे भी हैं, पुण्य भी हो सकते हैं। अरे ऐसी अपेक्षा नहीं लगती जिनवाणी में, जो बुरी चीज है वो बुरी है, वो पाप है वो पाप है, वो पाप नहीं है। अब हमने कई पापों को नहीं है पाप मान लिया, पाप नहीं है, धर्म है। क्या धर्म? आप देखो, अब हमारे देखो कल्पना लोक में कैसे जाते हैं। एक साधु महात्मा जी बैठे थे, सामने से एक गाय निकली और उसके पीछे पीछे एक कसाई निकला जो गाय को काट मार के काटना चाहता था। गाय अपनी जान बचा के निकली थी। अब उस कसाई ने आगे महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी यहां गाय गई है कि नहीं? तो महात्मा जी ने सोचा कि मैं बता दूंगा गई है तो दौड़ के जाके पकड़ लेगा और ये काट देगा, इसलिए उनने कह दी इधर को गई, झूठ बोल दिया। तो ये झूठ सच है, ये अच्छा है, ये धर्म है, ये कर्तव्य है, सब बताते हैं। क्यों? क्योंकि उनने उस गाय की जान बचा ली। आज तक ऐसी कोई ना गाय हुई, ना कोई ऐसा महात्मा हुआ, ना ऐसा कोई कसाई हुआ कि कोई गाय में बचा दी, बेचारी गाय को पता ही नहीं होता है कि ये मुझे काटेगा। आप समझ आई ना? बिल्कुल अपन ने कहानी खड़ी करी, बिल्कुल अपने झूठी बात, अपन को झूठ बोलने को सपोर्ट करना है। मैं कहता हूं झूठ किसी भी कीमत पर भी नहीं बोलना चाहिए। तो आप क्या कहते हो? फिर बता देता इधर गई क्यों? आप समझ में आई ना? क्या करते बताइए आप? फिर वो हत्या कर देता, गाय को काट देता, फिर क्या कर क्या होता? अरे भाई और भी बहुत रास्ते थे, ये कोई जरूरी थोड़ी है कि हरेक आदमी हरेक के प्रश्न का जवाब दे। वो कसाई का जवाब महाराज को देना कोई जरूरी था? महाराज अपने आत्मा के ध्यान में काय नहीं थे, वो कसाई की बात सुनी क्यों? और कसाई ने पूछी भी थी, सुन भी ली थी, तो उन्हें जवाब देना जरूरी था? वे चुप नहीं रह सकते थे, मौन धारण नहीं कर सकते थे? दो ही रास्ते थे, कि वो सही बताते कि झूठ बताते। क्यों? मैं बोला आप कितनी छोटी सी बात है, तो हमारी समझ में नहीं आती। हम मान लेते कि हाँ झूठ बोलना भी किसी अपेक्षा अच्छा है। फिर सिनेमा में क्या बताते हैं कि एक आदमी ने सेठ जी के घर में चोरी करी। क्यों? कि उसकी मां बहुत बीमार थी, डॉक्टर ने कहा था कि आप 25,000 रुपया लेके आओ तो आपकी ऑपरेशन कर देंगे, नहीं तो आई मां मर जाएगी 2 घंटे में। तो वो गए थे, सेठ जी से बहुत हाथ पैर जोड़े और उन्होंने मांगा, सेठ जी से मांगा क्या, लेकिन सेठ जी ने पैसा नहीं दिया। उसको समझ में, उसने फटाफट वहीं सेठ जी की हत्या करी और तिजोरी तोड़ के करोड़ 25,000 रुपया निकाल के ले गया, ईमानदार था, 25,000 ले गया, 26 नहीं ले गया। इस सिनेमा के जो वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, हीरो ऐसे ही होते हैं, ले गए, अम्मा का ऑपरेशन करा लिया, अम्मा बच गई। इसलिए अब वो उसका कोई गलती नहीं है, उसे कोई दंड नहीं मिलना चाहिए। सारी मूर्ख जनता उसकी जय जय बोलती है और सेठ जी को फिर भी खेलना है। उनकी हत्या भई, उनका माल गया, तो क्या करना चाहिए था? क्यों भाई, क्या करना चाहिए था? सेठ जी को दे देना चाहिए थे 25,000 रुपया। ऐसा कोई भी आएगा और बोलेगा मेरी मां मरने वाली है, मुझे इतने पैसा चाहिए, तो सेठ जी को निकाल निकाल के दे देना चाहिए। बोलो कौन से सेठ जी ऐसा करने को तैयार हैं? एक आध का तो कर लोगे, लेकिन हरेक कोई आएगा ना। तो ये राजमार्ग है, राज व्यवस्था रहनी चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, वो सेठ आजाद है कि नहीं है कि किसको देवे और किसको ना देवे। हम चोरी को, हत्या को भी हम अच्छा बढ़िया मान लिया, क्योंकि वो तो उसने बहुत आवश्यकता थी है? और इन दुष्टों ने उसको किसी को नहीं दिया, उसने 10 जगह बेचारा मांगने गया था। मैं जब पढ़ता था 8-9 वर्ष का रहा हूंगा, 10 का होऊंगा, मैंने एक नाटक देखा था, वहां मुरैना में पढ़ता था और ऐसे बीच चौराहे पर नाटक हुआ था, तो हम लोग नाटक में देखने गए थे। तो उसमें मालूम क्या दिखा रहे थे, आज भी वो दृश्य मुझे ख्याल में आया कि एक बेस्या थी, एक सेठ जी थे, वो सेठ जी को कह रही थी कि सेठ जी यदि तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया और ऐसा नहीं किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, मर जाऊंगी मैं, तो तुम्हें हत्या का दोष लगेगा। तो व्यभिचार का दोष बड़ा है कि हत्या का, इस समझे ना। इसलिए व्यभिचार का पाप छोटा है और हत्या का पाप बड़ा है, इसलिए आपको एक कर लेना चाहिए। तो सेठ जी ने इस तर्क के आधार पर उसकी बात मान ली। उस दिन में भी समझ में नहीं आया था, ऐसे तो कोई भी आएगा है? क्यों, वो दो पाप के दो में से एक पाप करना पड़ेगा क्यों करना पड़ेगा? मैं नहीं उसकी बात मानूंगा और वो आत्महत्या कर लेगी तो उसका पाप मुझे क्यों लगेगा, बताओ? नहीं, हमारी समझ में नहीं आता। क्या कि साहब आप कह दो कि तुम करना है कर ले, चाहे नहीं क्या, हम क्यों कह दें कर लो, क्या जरूरी है? हमको कोई जवाब देना जरूरी है? हम उसकी बात नहीं माने लेकिन हमें ये कहने का, तू चाहे हत्या कर ले चाहे जो कुछ कर, हम इसी ऐसा भी क्यों कहें? हम इतना समय अपना खराब क्यों करें? यानी हमने, यानी तब से मुझे उस बात का विद्रोह था, आज उतना ही विद्रोह था, कहें ये बेकार नाटक चलो अपन वो नहीं देखना। ये पाप का पोषण कर रहे हैं, ये जबरदस्ती ऐसे पांचों पापों में ऐसा लगा लगा करके और हमारी निकाल निकाल के हम सब पांचों पापों का पोषण करते हैं। ऐसा ही कर सकते हो? मैं कहता हूं हिंसा झूठ चोरी कुशीलो परिग्रह किसी भी तर्क के आधार पर करने योग्य नहीं है, कोई भी तर्क इसमें माफ नहीं किया जा सकता है। नहीं करना वो नहीं करना, वस्तु का स्वरूप क्या है? देखो अपन पढ़ रहे हैं ना, जो द्रव्य बरत चुकी बरत रही भविष्य में बरतने वाली विचित्र पर्यायों की परंपरा के प्रकार से त्रिविध काल कोटि को ये काल कोटि लेना उत्तम जनी वो उत्पाद ध्रुव वाली भी काल कोटि है, देवगुण पर्याय वाली भी है तीन, लेकिन वो नहीं यहां ये लेना। काल कोटि को स्पर्श करते होने से अनादि अनंत है, ऐसे वे सभी द्रव्य गेय हैं। क्या सभी द्रव्य माने? द्रव्य सत्य, गुण सत्य और पर्याय सत्य है ना, प्रयोजन सार में तीनों सत्य हैं। तो सभी सत्य उनके ज्ञान में झलकते हैं, वो गे जो हैं वो अकेले द्रव्य गे नहीं है, द्रव्य के एक एक के अनंत गुण भी गे हैं और उनकी एक एक समय में होने वाली अनंत अनंत पर्यायें वे भी गे हैं। ये सब गे हैं माने जानने योग्य, मैंने केवल जी के ज्ञान में झलकती हैं, जानने में आती हैं, परमानंद ऐसी गेह नहीं है कि झलक सकते हैं, ये झलक सकते हैं नहीं, जैसी शक्ति है उनमें कि सबको जान सकते, सबको शक्ति तो हम में तुम में है, वे तो सबको जानते हैं, समझ में आए ना। वे गे भूत द्रव्य, अब समझना ये स्व और पर के भेद से दो प्रकार की, अभी तीन प्रकार की कही थी, अभी दो प्रकार आ गए, और तीन प्रकार हैं कि दो प्रकार है। वो कहते हैं कि जिन द्रव्यों में, कौन से द्रव्यों में, जिनकी अनादि से अनंत तक अनंत पर्याय हैं, वो तीन कोटि को स्पर्श करती हैं। कौन सी तीन कोटि, अनेकांत, भूत, वर्तमान और भविष्य, ऐसे वे जो अनंतानंत द्रव्य हैं वो सभी द्रव्य गे हैं। अब सुनेंगे ना, अब गे क्या है, वो सभी द्रव्य, द्रव्य माना द्रव्य गुण पर्याय, ये सभी गे हैं। अब समझ में, गे कौन है, अब वो कहते हैं जो भी गे हैं माने सभी द्रव्य, उनमें से दो भेद हैं, कौन, कि एक स्वगे और एक परगे। अब अपने आत्मा को इसको स्वगे में रखा और बाकी सब परगे, अब वो जो अपना आत्मा है वो गे भी है और ज्ञायक भी है, ये लिखा है इसमें, पढ़ता हूं, देखो दो प्रकार हैं, ज्ञान स्वपर ज्ञायक है, इस कारण गे की दुविधता मानी जाती है। यदि आत्मा में ये विशेषता नहीं होती कि वे स्व और पर दोनों को जाने, तो फिर गे दो प्रकार के होते ही नहीं, सब गे एक से ही होते हैं। क्या, जैसे नाई सबके बाल बनाता है, बनाता है, तो नाई के बाल बनाना हो तो दूसरे नाई के पास जाना पड़ता है, क्यों, वो नाई अपने बाल नहीं बना सकता। ऐसे ही ये आत्मा सबको जाने, और आत्मा को जानना हो तो दूसरे आत्मा के पास जाना पड़ता है, ऐसा तर्क किया है इसमें। नई कम सस्मात प्रजायते आगम का प्रमाण दिया है, क्योंकि कोई भी क्रिया स्वयं से पैदा नहीं होती, तो विज्ञान स्वयं को नहीं जान सकता, पर को जान सकता है। ऐसे हजारों उदाहरण मिलेंगे इसमें, इसमें दिया है, इसमें कोई दूसरा उदाहरण दिया है कि जैसे इस लोक में वो क्रिया, हाँ, उत्पत्ति क्रिया दी है, तो उत्पत्ति क्रिया, तो देखो कोई बच्चा बाप के बिना नहीं होता है, तो बाप से बच्चा पैदा होता है, मां से बच्चा पैदा होता है, सही है ना, कि खुद को पैदा होने के लिए दूसरे मां बाप चाहिए, खुद खुद से पैदा नहीं हो सकता ऐसा तर्क दिया मैं ही अपना बाल नहीं बना सकता, वो आजकल तो बनाने लग गए वो कहते हैं भैया दीपक का उदाहरण रखो, कि दीपक खुद को भी प्रकाशित करता है और दूसरे को भी प्रकाशित करता है। ऐसा शास्त्र में आता है कि दीपक को खोजने के लिए दीपकांतर की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे वो सफल प्रकाशक है कि वो उसके उजेले में सारे पर पदार्थ भी दिखाई दे जाते हैं और दीपक भी दिखाई दे जाता है, ऐसे ही ये आत्मा ये पर को भी जान लेगा और स्व को भी जान लेगा। शेष कर